परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी। मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना, मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
रूहानी क्रांति के सूत्र, इसमें आज रूहानी फकुर, तो जो मुरली मिली मुझे वो मुरली है 31/12/2003। उसकी चर्चा करने से पहले ये रूहानी फकुर क्या है वो थोड़ा हम जानते तो हैं सब, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रूफ है आप सब, क्योंकि बगैर फकुर के यहाँ आप उपस्थित नहीं हो सकते, न हम आ सकते यहाँ। तो दूसरी अन्य मुरलियों में मैंने देखा फकुर, वैसे बाबा ने तो सोमानधारी कहा, उसमें नशे की बात कही, इसमें भी एक जगह सिर्फ इस मुरली में नशे की बात आई है। और वैसे देखा जाए तो फकुर माना अभिमान, घमंड, स्वाभिमान, गौरव, बहुत सारी ऐसी बातें, लेकिन यहाँ उसका कोई मूल्य नहीं है, नशा भी है, तो यहाँ हम नशे को ही लेंगे, यही है ना डॉक्टर साहब? वेरिफिकेशन तो कराना पड़ेगा ना। तो और नशा व्यक्ति कब करता है? जब बहुत ही कोई डेंजर उससे गुजर रहा होता है व्यक्ति। और अगर हम अपने यज्ञ का इतिहास देखें तो इतिहास भी पूरा जो शुरुआत है, कितनी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियों से यज्ञ गुजरा, उसमें भी क्या था, ये रूहानी फकुरी थी, फकुरी तो था ना वहां पर, जो कि उन विकट परिस्थितियों का सामना कर सके, खुशी खुशी से क्रॉस किया, चाहे वो हाँ बाबा के भवन को आग लगाई, चाहे वो पिकेटिंग हुई, चाहे वो मम्मा को कोर्ट में जाना पड़ा, ये कोई मामूली बातें नहीं है एक्चुअली। तो ये क्या था इसके पीछे, सब फकुर में थे, नशे में थे एकदम, यहाँ आए बेगरी पार्ट, 50 पैसे पड़े हुए हैं भंडारी में, कुछ नहीं है, लेकिन बाबा के पास बार बार भंडारी जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई ये क्या है? वो बैठा है ना ऊपर फकुर में, एकदम टांग पे टांग चढ़ाए हुए बाबा मस्त बैठे हुए हैं नशे में, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र वास है एकदम। अभी हमें कुछ दिन पहले, हम इधर जो गवर्नमेंट शमशान घाट है वहाँ हमें जाना पड़ा, एक बहन ने, सेंटर की बहन ने, बड़ी बहन थी वो बूंदी की, उसने शरीर छोड़ा, तो हम तो साथ साथ सेवा की और काफ़ी पालना भी ली, तो मन में आया कि जाना चाहिए, लेकिन अब उसमें गाइडलाइन में ये था ही नहीं कि भाई आप जा सकते हो, लेकिन हमें सब भाई जो भी थे यहाँ वहाँ के, तो सब ने कहा कि चलना है चलना है, तो मैंने कैसे जाएंगे वहाँ, ये कोरोना है। तो वहाँ हम गए, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पूछा बड़ों से, छुट्टी ली, तो मैंने कहा मैं दूर रहूँगा, मैं नज़दीक नहीं जाऊँगा। तो वहाँ 3-4 बॉडियाँ जल रही थी और ये भी थी एक, तो वहाँ जो मतलब ये जो कार्य कर रहे थे संस्कार करने का, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आप वो मास्क भी ठीक से नहीं लगाए हुए, कुछ भी नहीं, मैंने कहा आप लोग ये ऐसे कैसे करते हो, मैंने कहा ये जो डेड बॉडी जल रही है ये कोरोना वाली है ऐसे ही बोला, ये सब यहाँ कोरोना ही आता है, रात में ऐसे ही बॉडी रख जाते हैं और पैसे भी रख जाते हैं ऊपर और चले जाते हैं, कोई कौन है क्या है कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं उनका इंटरव्यू लेने में लग गया, तो मैंने कहा ये आपको कोरोना नहीं लगता क्या? बोला हम नशे में रहते हैं ना, कोरोना से भी ज़्यादा नशा हमको है। बोला हमारा क्या करेगा कोरोना, तो वो अपनी वही जो हाँ जो भी है, लेकिन बात नशे की है। हम हाथ धोते हैं या जहाँ भी लगाते हैं, लेकिन वो सीधा अंदर डाल लेते हैं, उनकी नसों में घूमता है वो अल्कोहल, तो वो कितने निश्चिंत, कितनी विकट परिस्थिति, जो दूर बच्चे तक अपने अगर बाप ने शरीर छोड़ा है ना तो वो नज़दीक जाना नहीं चाहते। माँ कितनी मतलब मोह होता है बच्चे को, और बच्चे को बच्चे का मोह जो है माँ को बहुत होता है, लेकिन जब ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो कोई नज़दीक नहीं जाता, लेकिन वो लोग ये कार्य कर रहे हैं, तो नशे की बात है। कुछ नहीं, हाथों में भी कुछ नहीं, ऐसे ही पकड़ पकड़ खींच के, अगर कोई बोलता है कि थोड़ा खोल के दिखा तो दो शकल, तो वो भी कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो बात नशे की है, तो नशे में आर्मी में भी देखो आप, जब बहुत संकट आपातकालीन स्थिति होती है और कोई पीछे हटने का प्रयास करता है, तो उनको पहले से ही थोड़ा थोड़ा पिला के रेडी कर दिया जाता है ताकि वो कूद जाए मैदान में। हमारे पिताजी सुनाया करते थे हमें ये सब, कई सनिकत्तर की लड़ाई की बातें, चीन की जो लड़ाई हुई उन्होंने दोनों लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने हमें ये सब बातें सुनाया करते थे। हम ऐसे ही पूछते थे भाई दारू क्यों पीते हो, छुट्टी आते थे तो वो शाम के समय मेरे से ही बोलते थे थोड़ा 100 ग्राम ले आना, तो मैं देता था उनको। तो मैं ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा क्यों, तो बोला ये वहीं की आदत है। बोला खोपड़ियों में ठोकर मार के चलना पड़ता था, जब ये लड़ाई होती है ना ऐसे मरते हैं अपने भी और उनके भी, बस आगे भागना। तो हमारी भी जो मंजिल है ना, ये हमें बगैर रूहानी नशे के हम प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत दूर है। गीत में भी सुना ना, मंजिल अब नज़दीक है ना, ऐसे कुछ गीत में, दूर नहीं पास में ही है, क्योंकि बहुत नशा कर रहे हैं हम लोग डेली अलग अलग नशा, उससे भी कुछ नहीं हो रहा ना अभी। तो हम मुरली पर आते हैं, तो ये 31/12/2003 की मुरली है। शुरुआत ही इतनी सुंदर है मुरली की, जो फर्स्ट लाइन है ना, आज अनेक भुजाधारी बाप अपनी भुजाओं को देख रहे हैं। भक्ति में भागवत में कभी कभार गलती से चला जाता था, इंटरेस्ट तो नहीं था, भीड़ के कारण जाके जंगल में पेड़ों पर बैठ के सुनता था, क्योंकि बड़ा स्पीकर होता था ना जब गांव में भागवतें होती हैं छुट्टियों में गर्मियों में, तो वो पंडित जी सुना रहे थे, भगवान के बड़े लंबे हाथ होते हैं, बहुत भुजाएं होती हैं। तो जब ज्ञान मिला तो ये समझ में आया कि ये भुजाएं कितनी हैं, लंबी हैं, कैसी हैं। तो बाबा ने ये जो टाइटल दिया, एक्चुअली समान है ये, हम भुजाएं हैं उसकी। अब जिसकी भुजाएं होती हैं और जिसमें होती हैं वो, तो जितनी ताकत उसमें होती है तो वो ताकत भुजाओं में भी होती है। अब हमें फील नहीं हो रहा है, हम भूले हुए हैं, वो एक अलग बात है, बाकी ताकत की कोई कमी नहीं है हमारे पास। बाबा ने वैसे भी बोल दिया, हमने जन्म से ही तुम्हें सब वरदान और स्लोगन दृष्टि सब कुछ दे दिया। तो बात स्मृति की है, जागृति की है। हम जितना अधिक जागृत रहते हैं, जो हमें प्राप्त हुआ है उसके प्रति, तो वो हमें रूहानी नशा चढ़ता है। फिर बाबा ने कहा कि अनेक भुजाएं तो सम्मुख हैं, मतलब जो वहाँ सामने ही नहीं है बाबा के, बाबा सबको ही देख रहा है, जो उसकी भुजाएं हैं, जो समझते हैं या नई नई भुजाएं निकली हैं बाबा की, क्योंकि भुजाएं निकलती भी रहती हैं ना। ये भागवत में हमने नहीं सुना कि भुजाएं भी नई नई निकलती हैं, फिक्स सुनाते थे वो कि इतनी, कोई हजार कोई लाख ऐसे बोलते थे, लेकिन यहाँ पता पड़ा कि भुजाएं भी निकलती रहती, कम भी होती रहती। तो इस तरह से तो सूक्ष्म भुजाओं को भी बाबा देख रहे हैं। फिर बाबा ने आगे जो है मुरली में, वो भी नशे की बात है एक्चुअली। अब ये भुजाओं की बात आती है, तो बाबा ने कहा कि ये सहयोगी भुजाएं हैं, बाबा विशेषता देखता है, बाबा जो है भुजाओं की विशेषता देखता है। तो हमें नशा क्यों नहीं चढ़ता? हम जब भुजाएं भुजाओं को देखते हैं ना आपस में, तो हम कहीं ना कहीं कुछ और देख लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम सब भगवान की भुजाएं हैं, तो नशा उतर जाता है। एक बड़ी बहन का अनुभव है इसमें, वो फ्लाइट में थे, शायद वेदांती बहन, यहाँ रात्रि ग्रुप में एक बार बुलाया था उनको, तो फ्लाइट में थे, वो भी कोई बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसने ऊपर नीचे वो देखता रहा, शायद इस तरह का कोई व्यक्ति पहली बार देखा होगा। बहुत मुश्किल से उसने पूछा, आप लोग क्या करते हो? बोला, हम भगवान को मदद करते हैं, कोई आगे पीछे कोई बात नहीं, हम भगवान को सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। वो हैरान हो गया सोच के, उसकी चुप्पी बंद हो गई। बोला कि ऐसे भी लोग दुनिया में जो भगवान को मदद करते हैं? तो मतलब ये एक नशा है हमारा कि हम भगवान के मददगार हैं। आप सोचो, दुनिया में तो ये कोई सोच भी नहीं सकता, सारी दुनिया जो है उसकी मदद लेने के लिए लालायत है, उसकी क्षण भर की दृष्टि के लिए लालायत है, लेकिन हम घंटों घंटों दृष्टि लिया बाबा की, फिर भी है, हम सब समझते हैं इस बात को। बस वही मेकअप करना है जो फिर भी के पीछे है, जो गैप है। फिर बाबा ने कहा, तो विशेषता बाबा ने ये देखी कि ये चुनी हुई विशेष आत्माएं हैं, जो हैंड्स हैं, ये चुने हुए हैं विश्व से। अब आप सोचो, कितनी करोड़ों आत्माएं हैं विश्व के अंदर, 700 करोड़ में से हम थोड़े से लोग हैं, और हम में से भी कितने थोड़े यहाँ बैठे हुए हैं और शायद इस पे सुन रहे होंगे। दिखा तो नहीं रहे ना? अरे क्यों दिखा रहे हो? भगवान को दुनिया ढूंढ रही है और हमें भगवान ने चुना। अगर हम इस बात पर भी विचार करें तो भी नशा चढ़ा रहेगा, उतरेगा नहीं, क्योंकि इस रूहानी क्रांति में नशे की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आप देखो, ज्ञान में तो चल रहे हैं, जैसे कोई डाली पेड़ से तो लगी हुई है, फूल भी लगा हुआ है उस पर, लेकिन शायद उसे ठीक से आहार नहीं मिल रहा है। लगा हुआ तो है, ब्राह्मण लाइफ से जुटा हुआ है, लेकिन आहार ठीक से नहीं मिल रहा उसको, मुरझाया हुआ है, उदास है। इसी को कहते हैं क्या, भगवान की भुजा है ये भगवान की भुजा नहीं कहेंगे इसको, है? लेफ्ट हैंड भी काम मुरझाया हुआ होता है, कई तो बड़े लेफ्टी होते हैं, वो राइट से भी इतने अच्छे काम नहीं करते जितने लेफ्ट से करते हैं। और वैसे राइट भुजा जो है लेफ्ट की तुलना में वैसे मजबूत होती, क्योंकि यूज बहुत होता है, तो वो थोड़ी उसमें ताकत ज़्यादा होती है, और वो पवित्र भी मानी जाती है। तो हम वो भुजाएं हैं एक्चुअली। दुनिया जिसे ढूंढ रही है, उसने हमको ढूंढा, चुना, यहाँ लाके इकट्ठा किया। पर बाबा ने कहा, ये परमात्मा सहयोगी भुजाएं हैं। आप सोचो, कहाँ वो रामायण में दिखाया, बंदरों की सेना ली, ये किया, वो दुनिया भर की बहुत सारी बातें सुनी अपन। तो ज्ञान जब भगवान का सुनते हैं तो पता पड़ता, वो तो हम ही थे सब। और वैसे भी सागर मुरलियों में बाबा बोलते ही रहते हैं भिन्न भिन्न तरीके से, जिस तरह से हमने बाबा को गाली गलौज किया होगा अनजाने में, जाने में, वो भी छोड़ता थोड़ी है। तुम बंदर थे, तुम ये थे, तुम तो अभी कई को अगर अकड़ चढ़ जाए ना, ज्ञान का या योग का या जिसका भी, तो बाबा बोल देते हैं कि अभी तो तुम मकोड़े भी नहीं बने हो, चींटी तो छोड़ो। तो भगवान भी छोड़ता नहीं है एक एक चीज का सर्वे। अब एक मुरली में बोला है ना डॉक्टर साहब, तो बहुत उसे रिपीट करते रहते हैं कि एक एक का बदला लेंगे, जिस जिसने सर्वव्यापी बोला है। तो मतलब, तो इस तरह से हम सहयोगी हैं, और दूसरी बातें तो बहुत हैं, लेकिन उसके बाद बाबा ने कहा कि बाबा कोई फकोर है हमारे ऊपर। आप सोचो, अगर उतना माना नशा अगर हमें हो जाए, तो जो भी अभी तक हमारे में जो कमी कमजोरियां हैं ना, क्योंकि रावण की सेना अभी भी मरी नहीं है, बहुत बड़ी सेना, और उसको जीतना है हमें। तो जैसे बाबा ने कहा कि आप सारी दुनिया में देख कर आओ, चैलेंज किया कि ऐसी इतनी भुजाएं किसी को होती नहीं है, चाहे वो धर्मात्मा है, चाहे महात्मा है, कोई भी है, बाबा को ही नशा है हमारे ऊपर, और हम ढीले ढाले ठंडे ठाकुर, मुरली में देखो तो सोए हुए हैं, योग में बैठो देखो तो सोए हुए हैं, धारणा में देखो छोटी मोटी बात हो गई तो बाबा कहते कि तुम सुदर्शन चक्रधारी तो सारा गदा चक्र वो सब फेंक के एकदम सीधा ऊपर आ जाएंगे। इसको थोड़ी कहते हैं कि नशा है। तो वो गदा चक्र जो भी हमारे जो बाबा ने हमें जो दिए हैं ये सब कुछ धारण करके रखना है ना, ये तो माया के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी है। थोड़ा सा किसी को कुछ भी आप बोलो आप देखो पीछे ही पड़े रहेंगे वो। हाँ नहीं वो तो है, हमें नशा चढ़ाने के लिए संपन्न बनाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा को ही नशा है। फिर बाबा ने देखा कि बहुत आ गए हैं, 18,000 सभा है। फिर वहाँ पर जो है बाबा पूछ रहे हैं कि भाई नया वर्ष मनाने आए हैं आप लोग, तो नए वर्ष में नया वर्ष क्या याद दिलाता है? तो ये भी नशे की ही बात है, एक्चुअली पूरी नशे की बात है सारी। एक बहुत लंबी बातें हैं इसमें, लेकिन मुरली बड़ी है, हम थोड़ा टाइम कितना है चलते रहे। अच्छा तो बाबा ने कहा कि नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया जन्म और नया युग, परिवर्तन और वैसे बाबा ने तो दो ही बोले। ये बाबा भिन्न भिन्न तरीके से हमें नशा चढ़ाने का फुल बाबा का हमेशा प्रयास रहता है। और वैसे भी देखो बच्चे को इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी माँ बाप को बच्चे को लायक बनाने की जो फिक्र होती है, तो वो इस मुरली में हम उसकी झलक देख सकते हैं। तो जैसे बाबा को स्पष्ट दिखाई देता था, बाबा ने उदाहरण दिया वहाँ पर, जैसे अभी आज आपको स्पष्ट पुराना और नया स्पष्ट नजर आता है, क्या तुम्हें अपना नया युग और नया जन्म इतना स्पष्ट है? बाबा ने कहा। फिर अपना उदाहरण दिया, अपना उदाहरण दिया कि जो आदि बच्चे हैं वो जानते हैं बाबा के पास आते थे, उन्होंने खुद भी अनुभव किया और बाबा को खुद भी अनुभव है। नया जन्म, नया शरीर, रजाई रूपी शरीर रूपी वस्त्र जो है, बाबा ने कहा कि खुटी पर लटका हुआ बाबा को दिखाई देता था। और ये बाबा को स्मृति बहुत पक्की थी एक्चुअली। सूरज भाई ने भी कई बार क्लासों में सुनाया है, क्योंकि ये तो हम बाबा से सुनी हुई और बड़े भाइयों से सुनी हुई बात बता रहे हैं। हम सोच सकते हैं एक्चुअली, बाबा का कोई भी पोज देखें आप उठा के, कोई भी पोज, मतलब नशे में ही दिख रहा है वो। कोई भी ऐसे नॉर्मल बाबा का कोई फोटो नहीं, और बाबा कोई फोटो खिंचाने के लिए नहीं बैठा होगा कहीं, जब फोटो खींचा होगा किसी ने, उसे कोई ये सब चीज़ों का शौक नहीं था बाबा को। तो बाबा को खुटी पर दिखाई देता था। दादी जानकी ने एक बार देख लिया उनको हिस्ट्री हॉल में, घुटनों के बल चल रहे हैं, मैं जाए मिचनू बनूंगा। बाबा क्या कर रहे हो? बोला बच्चे बस बाप नशा चढ़ा हुआ है। बोला बस गद्दा वद्दा तो नहीं होगा उस समय, वो जो दरियां होती है ना, दरी होगी। क्यों नशे में चुभता है क्या कुछ? नशे में तो लोग नाली में पड़े रहते हैं। ये तो बाबा है, ये तो रूहानी नशा है एक्चुअली, उनको कहाँ पता पड़ता है कि ये। अरे ये तो अभी सब चीजें आई हैं हम सबके लिए, हम बड़े लाडले हैं बाबा के, फिर भी कहाँ थोड़ा नशा चढ़ना चाहिए हमको। हम कितने राजाई से बैठते हैं, अब बाबा को लग रहा होगा इनको थोड़ा चुभन होगी, ये अगर कहीं इन्हें नशा चढ़ जाए तो सोफे पे ही थोड़ा घुटने वुटने चल लें, नशा चढ़ा लें कैसे भी करके। तो फिर बाबा ने कहा, फिर सेवा की, हाँ मम्मा का भी उदाहरण दिया है वहाँ पर, वो आगे है शायद ना, किसने पढ़ी है मुरली, कोई याद दिलाओ ना मेरे को। हाँ हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बाबा को जो है ना, मैंने सेवा की बातें बाबा ने की कि नवीनता क्या करोगे भाई, नए वर्ष में आपको ये बताया कि नया जन्म नया युग याद आए ऐसे ही स्पष्ट, जैसे अभी आपको स्पष्ट है ऐसे ही आप नवीनता क्या करेंगे? आप लाखों का प्रोग्राम किया, 2,00,000 का किया, क्या करोगे? तो फिर बाबा ने कहा कि स्वोन्नति स्वप्राप्ति तो करना चाहते हैं, दुनिया के लोग, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है एक्चुअली। सुन तो सकते हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है उनमें, बनने की हिम्मत नहीं। तो बनने के लिए क्या करना है, उन्हें पंख देने हैं बाबा ने कहा, हिम्मत के पंख। अब उसका आधार क्या है, अनुभव। अब अगर अनुभव थोड़ा सा अगर उन्हें हमने करा दिया तो उनमें पंख लग जाएंगे, उनमें मतलब आगे बढ़ने की वो एक हिम्मत आ जाएगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि अखंड महादानी बनो। अब अखंड महादानी बनने के लिए खाता चेक करो, क्योंकि जब तक माल अपने पास नहीं है देंगे कैसे, दे नहीं सकते ना। तो चारों सब्जेक्ट की बाबा ने बात की उसमें। अगर जमा हुआ है तो वो कैसे जमा हुआ है, क्या उसका मेजरमेंट है, हम कैसे समझें कि वो जमा हुआ है या घाटा हुआ है हमें। तो बाबा ने कहा जिसकी भी आप सेवा करते हो ना, तो पहले तो खुद को संतुष्टि होगी उनकी सेवा करके, और जिनकी हमने सेवा की उन्हें मतलब खुशी की संतुष्टि होगी, बड़े खुश होंगे वो। अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों बातें नहीं है, तो जमा नहीं हुआ। नहीं देखो, हम तो भागे भागे इस कन्फ्यूजन में थे, किसी को तैयार किया होगा, मैं सही बताऊं तो, इसलिए उलझ उलझ के थोड़ा सा बोल रहा हूं सोच समझ के। मैं सोचा कोई बैठ गया होगा, अब देख कर चले जाएंगे वापस। तो बाबा ने कहा अखंड महादानी बनो। तो अखंड महादानी बनने के लिए बाबा ने खाता चेक करो, क्योंकि बगैर जमा किए हुए आप महादानी बन नहीं सकते। तो वो कैसे बने, माना कैसे जमा होगा, तो ये विधि बाबा ने बताई। उसके लिए बाबा ने गोल्डन चाबी दी, सहज मतलब जमा हो जाए। वो है जब भी बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा किसी की सेवा करते हो तो ये चेक करो कि निमित्त भाव की स्मृति है। अभी निमित्त भाव से संबंधित बात तो हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे जो भी बड़े हैं, ब्रह्मा बाबा एक बार पैसा हाथ से छोड़ दिया, समर्पित कर दिया, दोबारा देखा नहीं कभी। अगर किसी ने दिखाया भी तो बाबा के समय कोई ऐसा बीच में कटा हुआ कोई सिक्का जैसा होता था, तो बाबा को लगा ये क्या, कोई नल का कोई वारसर है क्या, ये क्या है। बाबा को ये भी पता नहीं क्या चल रहा है अभी, मनी क्या है अभी। तो निमित्त भाव, निमित्त भाव का एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा अभी। ये जो महाराष्ट्र में हुए ना, कौन वो, नहीं नहीं वो महाराजा शिवाजी महाराज, उनके जो कुल गुरु, वो गुरु तो थे ही लेकिन राजनीतिक गुरु भी थे, उनके आध्यात्मिक गुरु भी थे। वो छोटे थे लेकिन जब वो बड़े हुए राजा बने तो वो देखते थे हमारे गुरुजी इतने ज्ञानी ज्ञानवान और ये ऐसे ही भिक्षा मांगते रहते हैं इधर, उन्हें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। उन्होंने एक चिटकी में लिखा कि मेरी चल और अचल संपत्ति शिवाजी की, उनके जो गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास, उनके नाम। उन्होंने देखा झोपड़ी में डाल के आ गए वो तो चुपचाप, देखा कि तो वो समझ गए कि ये शिवाजी के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता ऐसा काम। बुलाया उनको, पूछा कि सच है दिल से लिखा है आपने, बोला हाँ। तो बोला ये तो सब हमारा हो गया, तुम क्या करोगे अभी, तुम करोगे क्या अब। तो बोला हम कहीं भी कुछ भी नौकरी वोकरी कर लेंगे जाके। तो बोला ऐसा करो कहीं नहीं जाओ आप, नौकरी करनी है तो देखो मैं तो सन्यासी ठहरा, हमें तो ये राजाई वगैरह ये सब कुछ तो आता नहीं है, अब तुम हमारे ही नौकर बन जाओ, इधर राजा बनने की नौकरी करो आप। नौकरी करो, राजा नहीं हो आप लेकिन नौकर हो, लेकिन नौकरी किसकी करनी है, राजा बनने की, राजा बन के रहो। तो जब भी कोई, तो अब देखो आप झंडा तुरंत चेंज कर दिया गया, आज भी शायद भगवा झंडा ही होगा अगर वहां पर उसके कुछ है, देखा होगा ना आपने, उनका वो झंडा नहीं है। तो अब वो गद्दी तो गुरु की है लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं, तो मतलब सब कुछ देख रहे हैं उनकी कैबिनेट में, या जो भी कोई भी उन्हें निर्णय लेना है, कोई फेरबदल करना है कुछ, कहीं युद्ध की कोई बात आती है तो कुछ भी पूछना करना है तो जाके किससे पूछेंगे, गुरुजी के पास। टेंशन गुरुजी को, उनको काहे की टेंशन, फ्री हो गए। तो आप सोचो सारी संपत्ति, तो ऐसे भक्ति में भी हुआ, जैसे अपने यहाँ बाबा ने और बाबा के जो अनन्य बच्चों ने, बहुत जो अपने को पता ही नहीं है, नाम ही पता नहीं उनके, तो ये जो भाव है ना, निमित्त भाव, ये मालिक और मुनीम जैसा है। मान लो किसी फैक्ट्री में कोई मुनीम है, अगर बहुत फायदा हो जाता है तो वो कुछ नहीं एक लाइन में लिख देगा कि भाई 1.5 लाख का 2 लाख का फायदा हुआ, उसको काहे की खुशी मुनीम को, वो तो जाके आराम से अपना काम दूसरा करेगा जाके। खुशी होगी तो किसको होगी, मालिक को होगी। दूसरे दिन अगर घाटा हो गया 4 लाख का, वो लिख देगा एक लाइन में 4 लाख का घाटा, रात भर नींद पिटेगी उसकी पिटेगी, वो जाके आराम से सो जाएगा जाके। तो ये है निमित्त भाव, एक्चुअली ये निमित्त भाव है। फिर बाबा ने कहा कि ये तो एक निमित्त भाव की बात है, अब निमित्त है तो निर्माण अपने आप ही बन जाते हैं। शुभ भाव, अगर ज्ञान इमर्ज है, हम अच्छे योगी हैं, तो शुभ भावना के अलावा क्या आएगा मन में, कुछ नहीं आएगा, और कल्याण के सिवा कुछ नहीं सोचेंगे। और चौथी बात बाबा ने यहाँ पर बताई कि अगर जमा करना है खाता फुल, तो आत्मिक स्नेह, ये इमर्ज मतलब रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी आत्माओं की भावनाएं हैं ये पूर्ण हो जाएंगी। जब भी आप किसी की मनसा वाचा कर्मणा सेवा करेंगे तो भरपूर तो होंगे ही, लेकिन उनकी भावना पूर्ण होगी। अगर इसमें से कुछ भी माइनस है तो जमा नहीं होगा, और जमा नहीं है तो आप देंगे क्या भाई, जेब में चवन नहीं है और आप टिकट बधाइयों की कटाओ, ऐसे तो होता नहीं ना। हाँ, लाड़काना जो भी। फिर बाबा ने कहा, फिर आगे बाबा कुछ धारणा की बातें हैं, हाँ वो आगे है, जो यूथ इंटरनेशनल यूथ ग्रुप है उसमें, तो बाबा ने वहाँ पर कहा कि चेकर बनो, मेकर बनो, मेकअप करो, जो भी करो, लेकिन बाबा से वायदा किया है ना, समय के नज़ारे तो बाबा ने कहा देख रहे हो, तो समान बनने का वायदा किया तो उनसे हाथ उठवाए बाबा ने। फिर विधि भी बताई कि विधि ये है कि अगर समान बनना है तो ब्रह्मा बाप समान आपका खाता भी तो जमा चाहिए ना, बाबा जैसा चरित्र भी तो चाहिए ना। बाबा ने कभी मैं तो कहा नहीं ना, बाबा बाबा ही निकलता रहा। तो बाबा के जीवन में मैंपन की अविद्या अभाव था, तो ये हमारे पास होगा तभी तो हम बाप समान बनेंगे ना। तो यही तो कमी है, यही तो बीच में एक दीवार है, जो हर बात में मैंपन है। सेवा की तो उसमें मैंपन, योग किया तो हमारे जैसा योगी नहीं, मतलब हम सोच सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं विस्तार से, बातें बहुत सारी हैं उसमें। फिर बाबा ने मम्मा की भी एक धारणा की बात कही, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, और बाबा के मुख से कभी भी मैं तो, हम तो दादी को देखा ना, प्रकाशमणि दादी जो हमारी थी, कभी थर्ड पर्सन में ही बात करते थे वो, हमेशा कभी मैं बोलते ही नहीं थे। कितना मैं से कोई लेना देना ही नहीं, जैसे उनको वो है ही नहीं, कोई और ही बोल रहा है, जैसे कोई उस शरीर में बैठ गया। हाँ, तो इस तरह से, तो ये धारणा है हमारी, और इसके लिए बाबा ने हमें, यहाँ पर भी बाबा ने तीन हमें शिक्षा दी, शिक्षा की सौगात दी एक्चुअली, कि अगर सहज नंबर लेना है और संपूर्ण संपन्न बनना है तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अगर ये स्थिति है आपकी तो आप सहज बन सकते हो। अब ये निराकारी अगर बनते हैं तो निरहंकारी कल का वरदान था ना, कल का वरदान भी यही था ना, किसको याद है। तो निरंतर अगर उसका अभ्यास है तो निरंकारी आप ही बन जाएंगे, क्योंकि हमें चढ़ाने वाला उतारने वाला अगर कोई है तो वो मैं ही है। दादी जानकी हमेशा कहते थे, जब मैं बोलते हो तो अंदर चले जाओ और मेरा बोलते हो तो ऊपर चले जाओ। अब ये ड्रिल हमारी कितनी है, इसमें एक ड्रिल भी बीच में मैं बताना भूल गया, एक ड्रिल भी बाबा ने बताई कि जो बालक और मालिक वाली जो ड्रिल है ना, ये बहुत आवश्यक है बोला। जब आपको कोई विचार देना है तो आप मालिक बन के दो, लेकिन जब फाइनल होता है तो आप बालक बन जाओ। तो कितनी ढेर सारी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये निराकारी जो अभ्यास है, हमारे जो यज्ञ की जो शुरुआत, जो 350 लोग का क्या किया वहाँ 14 साल इन्होंने, यही तो अभ्यास किया। और बाबा सबसे बड़े एग्जाम्पल तो बाबा हैं हमारे लिए, कि बाबा को जो लगन लगी ना, वैसा इंटरेस्ट हमने तो किसी को देखा नहीं। बाबा को जो रुचि लगी, इतना इंटरेस्ट, बाबा को जो भी दीवार आई दीवार पे लिख दिया, बोला भी जसोदा आत्मा, ये आत्मा वो आत्मा सब आत्मा, कागज मिला कागज पे लिख दिया दीवार पे लिख दिया। तो आप सोचो कितनी मतलब गहरी फीलिंग है उसकी वो बनने की, और बन गए। बाथरूम की बात आप कह रहे हो तो एक बात याद आ रही है शुरू की, वहीं की हैदराबाद कराची की बात है, कि इतना अभ्यास करती थी वहाँ बहनें भाई जो भी थे थोड़े बहुत, कि मनोहर दादी सुनाती थी कि जब हम ज्ञान सरोवर सेवा में थे तो कई बार प्राइवेट मिलते थे, जनरल भी सुना देते थे जब इस संदर्भ में कोई बात आती थी, बोला बाथरूम तो कम होते थे, बहनें भाई इतने हैं तो कई बार जल्दी नहीं निकलते ना कोई, तो बाहर से ठोकते थे टक टक, भाई निकलो जल्दी बाहर। तो अब वो तो अभ्यास में लगी हुई है अंदर, कि मैं तो बस ऊपर से आई हूँ और इस मिट्टी की देह में प्रवेश किया है। अब इतनी गहरी फीलिंग में है कि उसने ये समझा ही नहीं कि बाथरूम से कब निकलोगी, उसको ये लगा कि शरीर से कब निकलोगी, क्योंकि उसी फीलिंग में है कि मैं ऊपर से आई हूँ और इस देह रूपी मिट्टी में प्रवेश किया। तो उत्तर क्या दिया कि जब शरीर छूटेगा तब निकलूंगी ना। आप सोचो ये कर्म तक चला गया ये अभ्यास, तो इतने अभ्यास करने तक की जरूरत है। ओम शांति।